मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 11 जनवरी 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी मित्रों मैं स्वागत करता हूं, विशेष रूप से अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है सुरेश बिश्नोई जो श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। तो सुरेश आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं और वे सूचनाएं हैं कि कल और परसों दो दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स पहले की तरह ही मिलेंगी। साथ ही साथ जैसा कि मेरे प्रिय पुराने श्रोता जानते हैं कि योजना के 2 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, उसमें एक हिंदी का होगा एक इंग्लिश का, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में साप्ताहिक प्रश्न कहते हैं, वो आप लोगों को दिया जाएगा और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इन सूचनाओं के बाद मुख्य विषय के तहत आज मैं समानता के अधिकार पर आपसे कुछ बातें करूंगा और क्यों करूंगा इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए जब मैं बातें करूंगा तब भी थोड़ी सी बातें उसके बारे में भी हो जाएंगी, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज आपने सुनी ही होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आपको सुनना ही चाहिए क्योंकि न्यूज सुनने के बाद ही आप इस डेली ऑडियो लेक्चर के साथ सही मायने में न्याय कर सकेंगे और इसका सही सही फायदा भी उठा सकेंगे। और मैं यहां आपको थोड़ा सा कहना भी चाहूंगा कि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुनने से पहले आप न्यूज सुन चुके हों तभी आपको इसका लाभ सही तरीके से मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को अभी आपने सुना और उसके बाद आप न्यूज सुने, ऐसा प्लीज ना करें। न्यूज में एक खबर थी कि जीएसटी काउंसिल, आपको मालूम है कि वस्तु एवं सेवा कर का एक परिषद बना दिया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही गजब का बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो अब जीएसटी के बारे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं ये परिषद निर्णय लेती है और हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री इसको उसके हेड होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि चुनाव के बाद अभी जो राज्यों 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें से खासकर राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई उसके बाद से लगातार आपको एक सरकारी नीतियों में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा होगा। सकारात्मक परिवर्तन इस मायने में कि इन चुनावों को एक तरीके से जनता का फीडबैक माना गया, उसकी प्रतिक्रिया मानी गई और उसका विश्लेषण किया गया कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ठीक है राज्य में भी वही सरकार थी, तो ये जो चुनाव में सरकार की हार हुई है ये कहीं ना कहीं जनता की प्रतिक्रिया है, वो सरकार से खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है, जब उसका विश्लेषण किया गया तो उसके कुछ कारण सामने आए और अब सरकार बट नेचुरल है कि उसी के आधार पर कदम उठाएगी और ये लोकतंत्र है और उसी के आधार पर कदम उठाया भी जाना चाहिए कि भाई जनता की क्या मांगे हैं या क्या नाराजगियां हैं। उसी के तहत आपने देखा कि सवर्णों की जब बात हुई, नगर के लोगों की बात हुई, युवाओं की बात हुई, तो उसको लेकर के 10% आरक्षण की का विधेयक बकायदे पारित हो गया है। और अब उसी के तहत एक बात आ रही थी कि जो छोटे और जो मझोले दर्जे के जो व्यापारी हैं वो जीएसटी को लेकर के बहुत परेशान थे और साथ ही साथ जो सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के जो लोग थे उनका भी व्यापार लगभग चौपट सा हो गया था। उसके 2 रीजन थे, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। तो स्वाभाविक है कि जीएसटी के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए था, सरकार ने सोचा और अब उसमें थोड़े से उन्होंने सुधार किए हैं। उस परिषद ने निर्णय लिया है कि जो सीमा थी जीएसटी देने की भरने की वो 20 लाख से बढ़ाकर के 40 लाख रुपए कर दी गई है। 20 लाख रुपए तो देखिए बहुत थोड़ा सा टर्नओवर होता है साल भर में, छोटे छोटे व्यापारी भी कर लेते हैं, उसे अब बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। यानी कि 40 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारियों को अब जीएसटी के संग आप कह लीजिए जटिलताओं में नहीं पड़ना पड़ेगा। और इसको फिर कुछ राज्यों के लिए जो जहां कम थी उसको भी डबल कर दिया गया है, 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए, उत्तराखंड और आपके इन राज्यों में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं होता हिमाचल प्रदेश में, तो वहां 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। खैर, ये कितना कर दिया गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके माध्यम से मैं आपको थोड़े से जो लोकतंत्र और सरकार की नीतियां होती हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। फिर जो दूसरी खबर थी वो सीबीआई के हेड को लेकर के थी, निदेशक को लेकर के थी। आपको किस्सा मालूम है, सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन्हें सरकार ने हटा दिया था उन्हें फिर से सीबीआई का निदेशक बनाया जाए, उन्हें निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और फिर बाकी निर्णय जो चयन समिति है उस पर छोड़ दिया गया था। चयन समिति, यहां देखिए आपको इसकी थोड़ी सी बारीकी को समझना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप इसमें उलझ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को, यानी कि अचानक सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया गया था, राइट। सुप्रीम कोर्ट का केवल यह कहना था कि चूंकि सीबीआई के डायरेक्टर का चयन करने का अधिकार चयन समिति को है तो उसे हटाने का अधिकार भी चयन समिति का होना चाहिए। न्यूज में आपने सुना है, पढ़ा भी है कि किस तरह से रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दलील यह थी कि अगर हटाना ही था तो फिर चयन समिति की बकायदे मीटिंग होती, वो निर्णय लेता और उनको हटा दिया जाता। अभी जो फिर से उनको हटाया गया है, याद रखिए कि इसे सरकार ने नहीं हटाया, वैसे तो सरकार नहीं हटाया, लेकिन सरकार का यह जो निर्णय है ये चयन समिति का निर्णय है, चयन समिति। और आप देखिए कि चयन समिति में कौन, इसके कंपोजिशन को समझिए, यह बहुत ही गजब किस्म का डेमोक्रेटिक कमेटी है। एक तो प्रधानमंत्री हैं, राइट, और दूसरे जो हैं वो है विपक्ष के नेता। चलिए, विपक्ष के नेता हैं लेकिन अभी जो कांग्रेस के खड़गे जी हैं वो उसके नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तीसरे जो मेंबर हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आने की स्थिति में नहीं है उस मीटिंग में तो फिर वो अपने किसी दूसरे जस्टिस को भेज देंगे। तो अब इन तीनों के चरित्र को देखिए, चरित्र इनफैक्ट इंडिविजुअल चरित्र की बात मैं नहीं कर रहा, पॉलिटिकल करेक्टर को देखिए, है ना, प्रोफेशनल करेक्टर को देखिए। प्रधानमंत्री नो डाउट सरकार के हेड हैं तो सरकार के पक्ष में बात करेंगे, अपने ढंग से निर्णय लेंगे जैसे वो अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो डेफिनेटली उनके निर्णय को बैलेंस करने के लिए, देखिए अभी भी चयन समिति ने लगातार यही कहा, चयन समिति के में जो विपक्ष के नेता हैं कि नहीं नहीं इनको जो बीच में गैप हुआ है उसकी भी सैलरी दी जानी चाहिए, वो इसके पक्ष में नहीं थे कि उनको हटाया जाए। तो यहां डेमोक्रेटिक रूप आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नहीं कि सरकार जो भी निर्णय लेना चाहे वो ले ले, उसको बैलेंस कर रहे हो। और तीसरे हैं सीधे सीधे जुडिशियल के मेंबर जिनसे हम तटस्थता की उम्मीद करते हैं और वो तटस्थ होते भी हैं। तो तीन सदस्यों की समिति है, अब उसमें से दो ने यह निर्णय लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री थे कि नहीं अब इन्हें बनाया नहीं जाना चाहिए, उनको हटा दिया गया और उनको दूसरी नियुक्ति दे दी गई। उसका रीजन ये दिया गया कि क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन पर अभी जांच चल रही है, उसके आधार पर जज ने भी उनका समर्थन किया। याद रखिए उनको नौकरी से नहीं निकाला गया है, उन्हें दूसरे पद पर भेज दिया गया है। तो ये डेमोक्रेटिक करेक्टर इसका देखिए चयन समिति का, यानी कि सरकार ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो कर लेगी, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मित्रों, अब दो छोटी छोटी बातें और हैं। आर्थिक आरक्षण पर, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उस पर जनहित याचिका दायर हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में सुनवाई करनी है, अपना डिसीजन देना है और यह होना ही था, लोग मान करके चल रहे थे कि जनहित याचिका इसके विरुद्ध दायर होगी। आज के करंट कंटेंट में आपको भारत के स्टार्टअप के बारे में एक लेख पढ़ने को मिलेगा जो अमिताभ कांत का है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है समानता का अधिकार। देखिए, जो समानता का अधिकार है, मैं पहले तो उसके जो टेक्निकल जो हमारे संविधान में निहित है उसकी थोड़ी सी मैं बात कर दूं, प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो समानता का अधिकार है ये हमारा पहला मूल अधिकार है, पहला मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, यानी कि हमारे सात मूल अधिकार हैं उसमें से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, उसमें से जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि समानता कितना प्रोमिनेंट है, इक्वेलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और जब आप फ्रांस की क्रांति में देखते हैं उसमें भी आपको मिलेगा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। हालांकि मूल अधिकार 12-13 में भी है, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में भी है, तो उससे चीजें उलझ जाएंगी क्योंकि उसका न्यायिक पुनरीक्षा वगैरह से संबंध है। तो मूल अधिकार को हम लेते हैं, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, थोड़ा सा हम उसे देख लें। अनुच्छेद 14 में है कि जो कानून है उसके सामने सभी समान होंगे। अब आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस पूरे के पूरे समानता के अधिकार को ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अनुच्छेद केवल आप 15 और 16 को पढ़ लें। यूपीएससी ये देखता है कि स्टूडेंट किस पर फोकस कर रहा है, तो ये उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा अभी 15 और 16 के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो बाकी छोड़ देंगे कि 14 क्या है, 17-18 क्या है। तो मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, हो सकता है कि ना पूछा जाए लेकिन आपको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। तो जो अनुच्छेद 14 है उसका संबंध है विधि के समक्ष समानता, सब कानून के सामने सभी बराबर हैं। 15-16 के बारे में आप जानते हैं, मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत, और ये एक साल प्री में सीधे सीधे पूछा भी गया है, छुआछूत का अंत आप जिसे कहते हैं, तभी मनुष्य समाज में सभी समान हो पाएंगे। अगर अस्पृश्यता को आप बनाए रखेंगे तो समानता कैसे स्थापित होगी, ये सामाजिक समानता है। विधि के समक्ष समानता कानूनी समानता है। और इसके बाद 18वां है उपाधियों का अंत। अंग्रेजों ने किसी को बहादुर, किसी को कुछ कह दिया था, किसी को राय बहादुर कह दिया था, किसी को राय की उपाधि दे दी गई थी, ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। कोई महाराजा है, कोई सम्राट बना हुआ है, नो, ये कोई भी इस तरह की उपाधियां अब एग्जिस्ट नहीं करेंगी। केवल दो उपाधियां अस्तित्व में रहेंगी, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में होनी चाहिए। केवल दो उपाधियां रहेंगी, पहली उपाधि वह जो राष्ट्र ने सेना के रूप में दी है, सेना के द्वारा दी गई उपाधि, सेना को दी गई उपाधि कह लीजिए, जब सरकार सेना सैनिकों को कोई उपाधि देती है। और दूसरा है शिक्षा के माध्यम से आप कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, तो ये दो उपाधियां अस्तित्व में रहेंगी, बाकी सभी उपाधियां समाप्त हो जाएंगी। ये है 14, 17 और 18। अब मैं 15 और 16 पर थोड़ा सा आता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं कि जो परिवर्तन किया गया है पूरे अनुच्छेद में नहीं किया गया है। याद रखिए कि नए अनुच्छेद उसमें नया क्लॉज जोड़ा जाता है, यानी कि पुराने को आप बदल देते हैं, जनरली नया क्लॉज जोड़ा जाता है। तो 15 को जब हम करते हैं तो देखिए 15 में तो है कि समस्त नागरिकों के समान अधिकार, ये 15 है। फिर 15(1) से लेकर के हम आगे तक चलते हैं तो 15(15) का जो क्लॉज है 4 और 5, इस पर फोकस कीजिए, क्लॉज 4 एंड 5। 4 एंड 5 में दिया हुआ है कि सामाजिक, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण। यह मैं आपको संविधान के शब्द जो के त्यों नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा सरल करके बता रहा हूं। अब इसमें फिर ध्यान दीजिए कि शब्द दिए हुए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, इसके बाद दिया हुआ एसटी या एसटी एससी, तो एसटी एससी को तो आरक्षण दे दिया गया है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के तहत आपने ओबीसी को आरक्षण दे दिया, राइट। यहां देखिए कि आर्थिक शब्द नहीं है, और अभी सरकार ने क्या किस पर आरक्षण दिया है, आर्थिक शब्द पर, तो एक क्लॉज ऐड कर दिया गया और वो कर दिया गया आर्थिक, यहां परिवर्तन किया गया। फिर हम आते हैं 16 पर, तो 16 में परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां बात बन जाती है इसलिए क्योंकि 16 का जो संबंध है, अनुच्छेद 16 का, उसका टाइटल है देखिए सरकारी नौकरी और सेवाओं में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी और सेवाओं में अवसर की समानता। और आपने देखा सरकारी सेवाओं में आरक्षण होगा, अवसर के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाएं तो अवसर है ना, तो वहां भी आप आरक्षण दे रहे हैं, तो यहां भी फिर आपको परिवर्तन करना पड़ा। और यह भी परिवर्तन करना पड़ा आगे जाकर के आपको एक ऐड करना पड़ा, और ऐड भी उसी रूप में करना पड़ा कि वहां आर्थिक शब्द आप जोड़ें। इसके तहत सरकार को अधिकार है 16 के तहत, 16(4), 16(4)(क), 16(4)(ख) और 16(5). सुनने में बड़ा अटपटांग सा लगता है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, बस थोड़े से आपके धैर्य की जरूरत होगी और थोड़ा सा वक्त देना होगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। उसमें संविधान ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के लिए कि किसी भी वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकता है। यहां भी पिछड़े वर्ग आर्थिक शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया है। अब सरकार आर्थिक रूप से आरक्षण दे रही पिछड़े हुए लोगों को, यूं कह लीजिए, ठीक है, पिछड़े हुए कह लीजिए या गरीब वर्ग कह लीजिए, तो यहां भी आर्थिक शब्द ऐड किया गया है। तो दोस्तों, ये इसकी थोड़ी सी बारीकियां थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और मित्रों, इसी के साथ ही 2 दिनों की आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि अब 2 दिनों तक आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकेगी। सोमवार को फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, साथ ही मुझे इजाजत भी दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।